భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గణి మంగళం కుందకుందార్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం ఆత్మా జ్ఞానం స్వయం జ్ఞానం జ్ఞానాదన్యత్కరోతి కిం పరభావస్య కర్తాత్మా మోహోయం వ్యవహారిణాం అజ్ఞానతిమిరంధానాం జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుణ్మీలిదం యేన తస్మై శ్రీగురువే నమః ప్రణమ్యూణజీర్ణం వీరం అనంతనరణానదంశనసహావం వోచ్చామి నియమసారం కేవలీ శుత కేవలీ ప్రణిదం. यह नियमसार नामक जो शास्त्र है उसका हम शुद्ध भाव अधिकार देख रहे हैं. इसमें गाथा नंबर 37 वाली अपनी चल रही है, 38 गाथा 38. हाँ, ये नियमसार है. नियमसार के 38 ये गुरुदेव की जो प्रवचन रत्न चिंतामणि नाम का जो शास्त्र है उसका पेज नंबर है 27. देखो, हमने ये बात देखी थी, अब बहुत दिन से हम फिर से चालू कर रहे हैं 8 दिन के बाद, तो आप भूल ही गए होंगे कि कौन सा विषय चल रहा था. यहां तो शुद्ध भाव अधिकार चल रहा है और इसमें एक बहुत गजब की बात बताई है. वो ऐसी है, यहां जो 7 तत्व जो है उन 7 ही तत्वों को परद्रव्य कहने में आया है और वो परद्रव्य होने के नाते वह हेय है, आश्रय करने योग्य नहीं है. तो यहां तो बाकी अन्य तत्वों की तो बात ही तो ली ही है, लेकिन जीव तत्व को भी हेय कहा है ये विशेष रूप से. तो क्यों ऐसा कहा है? तो कहते हैं कि यह तो पर्याय रूप तत्व है. यानी अभी जो जीव की जिस प्रकार की जो पर्याय है वह पर्याय रूप जीव नहीं है. वह तो अनादि अनंत त्रिकाल विद्यमान ऐसा जो तत्व है उस त्रिकाली स्वभाव का यह जीव आश्रय लेगा तो ही उसे मोक्ष प्राप्त होगा. अब यहां कहते हैं कि यह जो 7 तत्व जो है वह आश्रय करने योग्य नहीं है. हेय नहीं है ये तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन आश्रय करने योग्य नहीं है क्योंकि वे पर्याय तत्व है. इतनी बात तो अपनी निश्चित रूप से आपको ख्याल में होगी. अब आगे हम बढ़ते हैं कि यहां पर हम पेज नंबर 27 पर आखिरी जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से चालू करना है. देखो, उसके पहले थोड़ा सा एक ऊपर का पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं तो अपने को कंटिन्यूएशन मिलेगा. कह रहे हैं, व्यवहार जीव ने बीजा बधा तत्वों पर्याय रूप छे ने. क्या कहते हैं? व्यवहार जीव, उसको व्यवहार जीव कहा क्योंकि निश्चय से जीव तो जो त्रिकाली रहता है वो, और जो पर्यायात्मक अभी जिस पर्याय में जो है वह जो पर्याय जीव है तो वह भी पर्याय रूप होने से बीजा तत्व छे. तेथी जीव एटले आत्मानो जे एक समय नो क्षायोपशमिक भावनो पर्याय छे ते. क्योंकि अभी क्या है कि जीव में ज्ञान गुण जो है, दर्शन गुण जो है, अभी यहां तो केवल सिर्फ ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं. तो ज्ञान जो है वह तो क्षायोपशमिक ज्ञान है और क्षायोपशमिक ज्ञान जो होता है वह तो अपूर्ण होता है, अधूरा होता है और वह पर्यायात्मक है. इसलिए कहते हैं जे एक समय नो क्षायोपशमिक भाव, ज्ञान की बात नहीं ले रहे, भाव ते पर्याय छे. निगोदमापन क्षायोपशमिक भाव छे. ऐसे कितने भाव है किसको याद है क्या? जीव के पास कितने भाव है? हाँ मम्मी जी, आप बताएगी. हाँ प्रेरणा भी. हाँ हाँ और हाँ, और एक बताया था ना पहले, नहीं बताया. जो अपने पास पूरा स्टॉक में उसको भूल जाती है आप, औदयिक भाव उनसे भरपूर है, शायिक भाव होगा ना अपने पास, नहीं सोचना बराबर, शायिक भाव है क्या नहीं, पर्याय में है क्या नहीं, वही तो पूछ रहा हूं, नहीं है तो फिर कौन सा भाव के साथ हो आप? हाँ आप बताएंगे पिनांग भाई, अभी आपके पास कितने भाव मौजूद है? ये हमारा हुआ था, हाँ कौन आप बताएंगे बहन? चाय श्रमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, तीन भावों से यह जीव है। यहां क्या कहते हैं, तुम्हारी हमारी बात नहीं कर रहे, हमको किस गैटायर में कैटेगरी में बिठाना चाहते देख लेना, क्या कहते देखो, निगोद मापन सार्वजनिक भाव छे ने तो अपना मापन तो निगोद में भी सार्वजनिक भाव है, निगोद में भी औदयिक भाव है और निगोद में भी कौन सा हो गया, सार्वजनिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, निगोद में भी और अपने में भी, अपन दोनों शरीक है ना ऐसा कह रहे, क्या खा देखो, जीव एटले आत्मानो एक समय नो क्षायपशमिक भावनो पर्याय छे, ते निगोद मापन क्षायपशमिक भाव छे एटले जीव तरीके क्षायपशमिक भाव लीधो छे, जारे औदयिक भाव तो अभी यहां तो सब्जेक्ट ही जुदा है, क्या कहते हैं, औदयिक भाव तो पुण्य पाप रूप आश्रव बंधमा जशे, यानी औदयिक भाव को किसमें लिया, कौन से तत्व में लिया, तो आश्रव तत्व में लिया और उसी में अटकते रहना, यह भी क्या कहते हैं, औदयिक भाव यानी बंध भाव जो है, तो जे क्षायोपशमिक भाव रूप विकास नो अंश प्रकट छे तेने व्यवहार जीव कहो छे, जो अभी उसका जो एक समय का जो अंश है प्रकट अंश, उसको यहां व्यवहार जीव कहा है। ए जीव तत्वनी बात थई अने आदि एटले अजीव पुण्य पाप रूप आश्रव भाव तेमा अटकवू ते बंध भाव, उसमें जो अटकना है वो बंध भाव, वो भी औदयिक भाव में गिना जाएगा, अबंध स्वभावनी अपेक्षा ए आ पुण्य पाप ते बंध भाव अने संवर निर्जरा मोक्ष, मोक्ष मार्ग ने मोक्ष आ बदा पर्यायो छे, अवस्था छे अने ते बदाने त्रिकाळी द्रव्यनी अपेक्षाए परद्रव्य कहेवामां आवे छे, ख्याल में आया? तो कहते जब ये सातों ही तत्वों को परद्रव्य क्यों कहा, कि त्रिकाळी द्रव्य की अपेक्षा से वो पर्याय है इसलिए परद्रव्य है, क्योंकि वह मेरे जितना है नहीं, मेरे से कम है, मैं तो अनादि अनंत हूं, ये तो एक समय मात्र है, अंश है और मैं अंशी हूं, इसलिए कहते वो परद्रव्य कहेवामां आवे छे। कई अपेक्षाएं कि ते बधाने त्रिकाळी द्रव्यनी अपेक्षाएं, अपेक्षा ध्यान में लेना, देखो बात तो ऐसी है कि अगर हम निश्चय नहीं की अपेक्षा से बात करते हैं तो मैं आत्मा हूं और आप सभी अनात्मा हो क्या, अरे सिद्ध भी मेरे अपेक्षा से अनात्मा है, थोड़ा समझना गड़बड़ी न हो जाए, ख्याल में आए? जैसा हमने देखा था जीव तत्व के जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है, यह निश्चय की बात है, तो वह जीव तत्व अध्यात्म की अपेक्षा से जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है वह जीव तत्व, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है वह अजीव तत्व, क्या तो सिद्ध में मेरा ज्ञान दर्शन है क्या? बोलते नहीं है, उनका उनके पास है, तो वो मेरी अपेक्षा से मेरे लिए वो अजीव तत्व है। वैसे मैं अध्यात्म की अपेक्षा कहो या निश्चय नहीं से कहो, परम निश्चय नहीं से, कि मैं अगर आत्मा हूं तो मेरी अपेक्षा से आप सब अनात्मा है, देखो जरा समझने की कोशिश करना, यहां तो बिल्कुल नियमसार की बात चल रही है, यहां तो केवल ज्ञान रूपी जो सम्यक पर्याय है, जो सबसे परिपूर्ण ऐसी जो पर्याय है, मोक्ष तत्व की पर्याय है, उसको भी परद्रव्य में डाल दिया है। ख्याल में आया? तो क्या कह रहे देखो, अवस्था छे अने ते बधाने त्रिकाली द्रव्यनी अपेक्षाए परद्रव्य कहेवामां आवे छे। एक ओर राम, राम एटले आत्मा राम, अने एक ओर गाम, ऐसा होता है ना, एक बाजू त्रिकाली एक रूप ध्रुव्य न्यायक भाव मैं आत्म राम, कैसा है? त्रिकाल है, एक रूप है, यानी कोई भी पर्याय में जाए तो वहां उसका रूप बदलता नहीं है, वही जीव वो एक रूप, यानी त्रिकाली जो उसका कभी स्वभाव बदले नहीं, ऐसा जो उसका भाव है वो एक रूप भाव, ध्रुव यानी कायम टिकने वाला ऐसा जो न्यायक भाव, और इस न्यायक भाव में जो आत्म राम है, इन्हें एक बाजू, अने एक बाजू आ सात पर्यायना समूह रूप गाम, आए सात तत्वों नो समूह कयो छे ने, सात तत्वों में तो जीव तत्व को भी लिया है, माटे ते गाम छे, समूह कयो ने एटला माटे, आवु झीनू तत्व छे, वीतराग मार्ग आवो झीनो छे। क्या कहते हैं? ये बहुत झीनो एटले सूक्ष्म मार्ग है। देखो आप अभी तो यहां बात अलग है, पहले जब गांव-गांव में चूल्हा जलता था लकड़ी के साथ, तो वो जो अग्नि होता था उसको उठाने के लिए एक चिमटा आता था, क्या बोलते हैं आप लोग, चिमटा बोलते हैं ना, तो उससे कोयला उठाते थे वो अग्नि, और उस रसोई करते करते कोई कान में बाली या कुछ भी होगा या हीरे के अंगूठी में से हीरा गिर जावे तो उसको उसी चिमटे से उठाएंगे कि नहीं, हाँ क्या करेंगे आप? भाई उसको उठाना हो तो उसके जैसा सूक्ष्म चिमटा चाहिए, चिमटी चाहिए, क्या बोलते हैं आप लोग, वो इतनी छोटी चीज है ना, वो जो हीरे के व्यापारी होते हैं उनके पास कितने बड़े बड़े चिमटे होते हैं हीरे को उठाने के, कैसे छोटे छोटे होते हैं। तो सूक्ष्म बात को पकड़ने के लिए अपना उपयोग भी सूक्ष्म होना चाहिए। ख्याल में आया? तो यहां क्या कह रहे हैं, आवु झीणु तत्व छे, वितराग मार्ग आवो झीणो छे, तो आवा झीणा वितराग मार्ग ने मार्ग झीण, देखो क्या है अल्टीमेट गोल क्या है, वितरागता, और वितरागता का मार्ग कैसा होगा, सरागता वाला, हाँ तेजू कैसा होगा, वितरागता, आवो वितराग नो मार्ग छे, अने ते पे केवो छे पाछो झीणो छे, यानी जब तक अपना उपयोग सूक्ष्म नहीं करते हैं हम, यहां तो जीव तत्व को भी बाह्य तत्व कह दिया, परद्रव्य कह दिया और हे कह दिया, तो ये क्यों ऐसा कह रहे, अपेक्षा कौन सी है? तो कहते जो त्रिकाली एक स्वभाव जो है मेरा, एक सदृश परिणाम, यानी त्रिकाली उस स्वभाव भाव में कभी भी कभी भी कभी भी तब्दीली नहीं होगी, ऐसा जो त्रिकाल जो स्वभाव है उसकी अपेक्षा से ये जो पर्यायात्मक जीव तत्व है उसको भी बाह्य तत्व कह दिया, उसको भी पर्याय तत्व में डालकर वह परद्रव्य कहने में आया है। तो कहते हैं आवो झीणु तत्व छे, वीतराग मार्ग आवो झीणो छे, तीर्थंकर सर्वज्ञ परमेश्वरे त्रण कारणे त्रण लोक जोया छे, तो तेमने वाणी मा जेवु जीव द्रव्य कह्यू तेवी आ जीव वस्तु जीव तत्व ते स्वद्रव्य छे, यानी त्रिकाली जो ऊपर आया ना उसका, देखो नीचे से थर्ड लाइन, ये ऊपर का पैराग्राफ है ना उससे थर्ड लाइन, त्रिकाल एक रूप ध्रुव न्यायक भाव में आत्म राम, ये अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं। तो वह कह रहे कि जीव द्रव्य कहूं ते आ जीव वस्तु आ जीव तत्व ते स्वद्रव्य छे, अने पर्यायो ने तेमने परद्रव्य कहया छे, जो द्रव्य की अपेक्षा से त्रिकाल द्रव्य की अपेक्षा से जो है वो मैं, और वहां जो व्यवहार मतलब पर्याय तत्व जो है जीव तत्व वह पर ये बात अही कहे छे के क्या आ गया तेमने परद्रव्य कहे छे भगवान नी वाणी मां आम आव्युं छे तेज बात अही कहे छे के अश्विन भाई आपके पास किताब है ना लास्ट लाइन में क्या लिखा है भगवान नी वाणी मां हूं कहू छु एटले नहीं हा? आ तो शास्त्र मां जे टीका रची जी पद्म प्रभ मलधारी देवे एना ऊपर गुरुदेव टीका करे छे एम कहे छे के भगवान नी वाणी मां आम आव्यु छे तेज वात आई कहे छे के जीवादी सात तत्वों नो समूह परद्रव्य होवाने लीधे कारण आपे छे के परद्रव्य होवाने लीधे आहा केवल ज्ञान ने मोक्ष सिद्ध दशा पण एक समय नी अवस्था छे अर्थात ते बदा पर्यायो अंश 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 रूप छे पण तेओ पण काही त्रिकाळी गुण के त्रिकाळी द्रव्य नथी माटे एक स्वभाव रूप चीज जे भगवान आत्मा छे ते सिवायना जेटला पर्यायना भेदो छे ते बधाय ने अहींया परद्रव्य कह्या छे अने तेवो परद्रव्य होवाना कारणे खरेखर उपादेय नथी एम कहे छे ख्याल में आया अभी यहां थोड़ी सी गाड़ी बदली है हे ये नहीं बोलता है क्या कहा उपादेय नथी सात तत्वों केम उपादेय नथी केम के स्वद्रव्य मा तेमा स्वद्रव्य तेमा आवतु नथी ये जो पर्यायात्मक जो सात तत्व है उसमें मेरा स्वद्रव्य नहीं आता है क्योंकि वे अंश है और मैं अंशी हूं केम के स्वद्रव्य तेमा आवतु नथी तेथी सात तत्वों परद्रव्य हुआने लीधे उपादेय नथी स्वद्रव्य एटले शू ने परद्रव्य एटले शू एकला परम स्वभाव भाव रूप ध्रुव चैतन्य दल भगवान आत्मा देखो क्या कहा सिर्फ एकला यानी सिर्फ परम स्वभाव भाव रूप ऐसा जो उसका परम स्वभाव है उस रूप और ध्रुव यानी सदोदित कायम टिकने वाला ऐसा जो है और चैतन्य दल यानी चैतन्य जो स्वभाव है वो तो घन स्वरूप है दल दल यानी पहले दल होता था ना ऐसा मतलब करोड़ों अक्षों क्या बोलते थे उसमें ये अक्षौणी बोलते थे उसको यानी लाख के ऊपर करोड़ करोड़ के ऊपर और कुछ 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 फिर वो अक्ष नाम का कोई एक संख्या आती है तो उतना तो सैन्य होता था ऐसा सैन्य खड़ा हो जाए तो आंखें फट जाए इतना तो इसलिए वह कह रहे हैं कि चैतन्य दल ये जैसा पायदल घोड़दल होता है ना ऐसा ये जैसा चैतन्य दल ए भगवान आत्मा ते स्वद्रव्य छे अने ते एक समय नी दशा मा आवतो नथी तेथी ते स्वद्रव्य नी अपेक्षा है हमेशा अपेक्षा लगाई है स्वद्रव्य नी अपेक्षा है आ सात पर्यायो ने परद्रव्य केवामा आयवे छे अभी यहां क्लियर हो गया ना कि यह जीव जो है वह तो त्रिकाल टिकने वाला ऐसा है तो वो पर्याय में नहीं आता है और पर्याय जो है उसमें वह नहीं आता है इसलिए ये सात तत्वों को भी परद्रव्य कहने में आया है पाठमा एटले गाथामा हे ये शब्द छे ने एटले टीकानी शुरुआत करता कहूं के आ हे अने उपादेय तत्वना स्वरूपनु कथन छे पण पछी टीकामा हे एम न कहता टीकाकार मुनिराजे एम कहूं के खरेखर उपादेय नथी याने अर्थ तो एक ही है उपादेय नथी एटले हेय छे पण टीका मूल गाथा में तो हेय कहा कुंद कुंद आचार्य ने लेकिन जिन्होंने टीका रची वो पद्म प्रभ मलधारी देव कहते हैं उपादेय नथी तो कह रहे हैं अर्थात नजर करवा लायक नथी एटले आदरणीय नथी नजरनू एटले ज्ञाननू शू कहे छे नजर नु निधान एवो अखंडानंद प्रभु आत्मा उपादेय छे। यानी निधान यानी जो संपत्ति होती है ना, बहुत वैभव, निधान खजाना जो होता है, एवो अखंडानंद प्रभु ये आत्मा जो है वह उपादेय छे। तो ते अपेक्षा आ सात पर्यायो धर्मी जीव ने आदरणीय अंगीकार करवा लायक नथी। तो जे जीवो ए तत्वों ने अंगीकार करे छे, ए उपादेय माने छे, ते केवा छे? धर्मी नथी। ख्याल में आव्यो ने? एटले एमने धर्म प्राप्त थयो नथी अजुन। प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, जरा शांति से समझना, बहुत सुंदर बात है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मा तो एम कहू छे के संवर उपादेय छे, निर्जरा हितकर छे, अने बंध अहितकर छे, अने मोक्ष परम हितकर छे। लियो आ वात नी सामे त्या वात नवमा अधिकार मा तो एम कहू छे। आप तो कहते ये तीनों संवर निर्जरा और मोक्ष आदरणीय नथी, उपादेय नथी, हेय छे, और वहां तो हितकर बताया, तो आप ऐसा कॉन्ट्रेडिक्ट क्यों कर रहे हैं? ऐसा जोर से नहीं बोला, खाली ऐसा ही बोला कि हम केम है, हमने मेड़ व्यस्त तो नहीं हम। तो भाई क्या तो बीजी अपेक्षाएं छे, प्रकट करवा लायक चीज एटले प्रकट करवा लायक पर्याय कई छे ते बतावानी अपेक्षाएं संवर ने उपादेय, निर्जरा ने हितकर, मोक्ष ने परम हितकर कया छे। अने आई त्या शू प्रकट करवा लायक नी वात छे, अने कहे छे अहींया आश्रय करवा लायक तत्वनी अपेक्षाए तेमने परद्रव्य कहीने हे कया छे। अपेक्षा ख्याल में आ गई? तो कह रहे हैं यहां तो आश्रय किसका करना ये बात बताई जा रही है, और वहां प्रकट करने की अपेक्षा से। और हमने जब सात तत्व सीखे थे तब उसमें सात तत्वों में याद है मिलिंद भाई आपको, हे उपाधेय और नहीं है, हे और उपाधेय कहां लगेगा? हाँ बताओ बताओ। हाँ अजीव तत्व से चालू करो तो आसान पड़ेगा आपको। हाँ ने हाँ गे बराबर। हाँ आश्रो तत्व है और बंद तत्व है। हाँ संवर और निर्जरा एक देश उपाधेय है, प्रकट करने योग्य उपाधेय है। हाँ और जीव तत्व आश्रव नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आश्रय करने योग्य उपाधेय तो चारों तत्व है, कौन से? संवर निर्जरा और मोक्ष और जीव। लेकिन यहां प्रकट करने की अपेक्षा से चल रहे, वहां कहते हैं प्रकट करने कैसा, एक देश प्रकट करने योग्य ऐसा संवर और निर्जरा है, और मोक्ष पूर्ण देश यानी परिपूर्णतः मोक्ष उपादेय है। किस अपेक्षा से? प्रकट करने की अपेक्षा से, और आश्रय करने की अपेक्षा से जीव तत्व उपादेय है। वहां उपादेय में चार तत्वों को डाल दिया और बाकी अजीव तत्व को हेय में, नेय में, नेय में, और आश्रय और बंध को हेय में डाल दिया। तो वहां यहां क्या कह रहे वही बात यहां समझा रहे। ये मैंने काय को रिपीट किया आपको कि यहां जो कहना चाहते वो समझ लेना चाहिए। क्या कहते हैं भाई, त्या तो बीजी अपेक्षा छे, त्या तो एटले मोक्ष मार्ग मा प्रकट करवा लायक चीज, चीज एटले पर्याय हो, प्रकट करवा लायक पर्याय कई छे ते बतावानी अपेक्षाए संवर उपादेय निर्जरा ने हितकर ने मोक्ष ने परम हितकर कया छे। ये तो हो गया ना। हाँ कहां तक आए थे हम? चलो फिर से पढ़ते हैं। अहियां आश्रय करवा लायक, आश्रय करना यानी जिनका आश्रय करना यानी जिसके आदरणीय कहो, आश्रय करने योग्य को तत्वनी अपेक्षाएं तेमने परद्रव्य कहीं ने हे कया छे। कहां? यहां नियमसार में સાત તત્વોમાં હેયપણું અને ઉપાદેયપણું કહીને ઉત્પન્ન કરવા લાયક શું છે અને વ્યય કરવા લાયક શું છે તે બતાવવાની અપેક્ષાએ તેમને તે વાત કરી છે. જ્યારે અહીંયા અભી આપને યહાં કી બાત ક્યા હૈ તો અહીંયા સંવર નિર્જરાદિ ઉત્પન્ન થયેલા હોય તો પણ ક્યા કહા સંવર નિર્જરા જીસકે ઉત્પન્ન હુઈ હૈ સમ્યક દર્શન જીસકો પ્રાપ્ત હૈ એસે જીવ કો સંવર તત્વ નિર્જરા તત્વ આદિ ઉત્પન્ન થયેલા હોય તો પણ તેમના આશરે નવી ધર્મદશા પ્રકટ થતી નથી તે અપેક્ષાએ પરદ્રવ્ય કહીને હે કહ્યા છે. યહાં જો બાત હૈ વો યે હૈ ક્યું પર્યાય કા આશ્રય લેને સે ધર્મરૂપ પર્યાય પ્રકટ નહીં હોતી હૈ. લ્યો આવી વાત આવી કોને ખબર ક્યાંથી આવે છે. ક્યાં કહા યે મેરે કો એસી બાત આઈ અભી તો કલ ઉધર લિખને વાલો ને લિખા હૈ અંતરમાંથી આવે છે. ઉન્હોને તો ટેપ મેં તો ઇતના હી બોલા હૈ આવી વાત આવી કોને ખબર ક્યાંથી આવે છે. ખ્યાલ મેં વો અંદર સે એસી બાત આ જાતી હૈ કભી કભી. આહા અંતર્મુખ વસ્તુ ભગવાન આત્મા અંત તત્વ છે કારણ કે જીવાદી બહિતત્વમ છે તો તેનો અર્થ એ થયો કે આત્મા અંતત્વમ છે. આહા આ તો વિતરાગના એટલે જૈન દર્શનના માખણની વાતો છે. અશ્વિનભાઈ ફિર સે દેખો ક્યા લિખા આ તો વિતરાગના જૈન દર્શનના માખણની વાતો છે. હું કહું છું ને એ વાત છે એમ નથી. આ જૈન દર્શનની જે વાત છે તેની વાત ચાલે છે. દેખો આપ મેં તો આપકો પેજ પેજ પર એ બતાવંગા. આપ જરા થોડે શાંતિ સે પઢેંગે તો આપકો એ વાત મેને જો સુબહ કહી થી વો ખ્યાલ મેં આયેગી. એટલે મેં એક સેમ્પલ તરીકે દો બાર આપકો ઉસકા આપકા અટેન્શન ડ્રો કિયા હૈ લેકિન દેખ લેના આપ ક્યા કહા. આ તો વિતરાગના જૈન દર્શનના માખણની વાતો છે. આમાં તો મુનિરાજે તીર્થંકરના પેટ ખોલ્યા છે. યાને તીર્થંકર કોઈ બડે સર્જન થયા એસી વાત નહીં હૈ ભાઈ. આ તો વાત છે સમજાય એટલું સમજો બાપા. ક્યાં કહેતે હૈ પેટની વાતો ખોલી છે યાને જો ઉનકે મન મેં થા ઉનકે અભિપ્રાય જો થા કહેને કા વો ઉન્હોને આપને સામને પ્રસ્તુત ક્યા હૈ તો પેટની વાતો ખોલી છે. પણ હજુ અજ્ઞાની તો અભી અજ્ઞાની કિસકો કહા સુનના ભૈયા. દયાદાન વ્રત ભક્તિ આદિના શુભ ભાવને ઉપાધેય માનીને અટક્યો છે. હરીશભાઈ આપણી વાત નથી અજ્ઞાનીની વાત છે. શું કહે છે હા શું કહે છે. હજુ અજ્ઞાનીને તો દયાદાન વ્રત ભક્તિ આદિના શુભ ભાવને ઉપાધેય માનીને અટક્યો છે બંધ કરે છે. અજ્ઞાની આ બધું વ્રત નિયમ ઉપવાસ આદિ કરે છે તેમાં જે કંઈ રાગની મંદતા હોય તો તેને ઉપાધેય માને છે. અરે તેને તો હજુ ક્યાંક દૂર જવું પડશે. એને ન માલુમ અભી યહાં સે કહાં ઉસકી ગતિ હોગી એસા કહેતે હા. તેને આકરું પડશે હો એને કહાં જાકે ગિરે તો આ દુબારા આત્મા કા કઈ સંબંધ નહીં આવે તો એને આ બધી વાતો આકરું પડશે એમ કહે છે. આય તો કહે છે કે જે સંવર નિર્જરા મોક્ષનો માર્ગ પ્રગટે છે એ જીસકે સંવર પ્રગટ હુઈ હૈ ઉસકો તો મોક્ષ માર્ગ પ્રગટ હુઆ હૈ તો જેને સંવર નિર્જરા એટલે મોક્ષનો માર્ગ પ્રગટે છે તે પણ આશ્રય કરવા લાયક નથી માટે તેને પરદ્રવ્ય કહીને હે કહેવામાં આવ્યો છે. અરે જન્મ મરણના આટા મૂકવા છે ને ભાઈ. ક્યાં સમજમાં આવ્યા ક્યાં બોલા. હા જન્મ મરણ કા જો ફેરા ચલ રહા હૈ ઉસકો આટા 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 મારવા એટલે બારંબાર ગોલ ગોલ ફિરના ઉધર તો ક્યાં કહેતે હૈ યે ખાસ ગુજરાતી હૈ. જન્મ મરણના આટવા આટા મૂકવા છે ને મૂકવા છે ને છોડું જાય છે ને છોડના હૈ ને આપકો એસા કહેતે હૈ તો સવારે કહ્યું હતું ને કે રજકન તારા રખડશે જેમ રખડતી રેત પછી નરતન પામીશ ક્યાં चेत चेत नर चेत क्या कहते हैं ये जो रचकन है ना, ये जो कोई है पैसा अड़का तेरे पास, जो कोई वैभव है, ये जो शरीर है, ये रजकन तारा रखड़ से जेम रखड़ती रेत, यानी जब बहुत तूफान आ जाता है तो रेत भी यहां से वहां निकल जाती है, कहां कहां जाती है पता ही नहीं लगता है। अरे हम अभी अभी दुबई गए थे तो एकदम मोटर में जा रहे थे शारजा से दुबई, तो इतना तूफान आया कि हमारे यहां जैसे बारिश आती है ना तो 50 फीट के आगे से कुछ दिखता नहीं, कभी कभी ऐसा बारिश में होता है, ऐसे वहां रेत इतनी आ जाए कि पूरे मेन रोड के ऊपर जहां से हम चलते थे उसमें भी 5 मिनट में तो रेत आ गई। तो कहां से आई, तो जहां रखड़ थी रेत, या अभी बिल्कुल बिल्कुल ख्याल में आता है मनुष्य भाव मिलना तो बहुत मुश्किल की बात है। चेत चेत नर चेत, हे जीव अभी तू जागृत हो, अभी तू तू चेत सावधान हो और अपने को आत्मा समझ। तूने तो आज तक अपने को शरीर मन वाणी रूप ऐसा यह मनुष्य है वैसा ही माना है, ये बात समझा रहे भाई। पर्याय ने रागनी रुचि मां तारी महा चीज रही जाए छे, वो कितनी करुणा करके कहते हैं। मैं तो बीच बीच में रुकता हूं, ये पूरा पढ़े तो बहुत मजा आ जाए। क्या कहते हैं देखो, पर्याय ने रागनी रुचि मां, पर्याय एटले जिस पर्याय में तुझे जो प्राप्त पर्याय है उस रूप ही मैं हूं ऐसा तूने मान रखा है, और ये जो शुभ राग है उस राग में ही तू अटका हुआ है। ये पर्याय ने रागनी रुचि मां, अत्यारे तो हमको इतना बड़ा रहने ठिकाने का खाने पीने का बहुत सामान मिल गया है तो उसमें हम तो सुखी हम तो सुखी, तू पर्याय में ही अटका हुआ है, राग में ही अटका हुआ है कि मैंने ऐसा किया, इतना लाख रुपया ध्यान दिया, ये किया वो किया। तो कहते हैं देखो भाई, पर्याय ने राग नहीं रुचि मां तारी महाचीज, महाचीज अरे तेरा स्वतः का स्वभाव, वो जो महाचीज है रही जाए छे हो एटले उसको तू भूल गया है वो। आहा, सर्वज्ञ भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव जैन परमेश्वरे ज्ञान मां जे जोयू अने वाणी द्वारा कहूं जे कहूं ते आ छे के भगवान एक समय ना शुद्ध पर्याय ने शुभ रागादिनी आड़ मां रुचि मां तारा एक स्वरूप भगवान आत्मा नो अनादर थई जाय छे। रागादि पामर ने ते प्रभुता आपी दीधी छे तेथी तारा भगवान आत्मा नो अनादर थाय छे। आहा, भगवान नी वाणी मां जारे आवतु हशे अने समोसरण मां एक अवतारी इंद्रो सांभळता हशे क्या कह रहे देखो, ये अभी तो हम तो ये बाह्य वैभव की और अपने शरीर की बात कर रहे, यहां तो कह रहे कि एक समय की शुद्ध पर्याय, अरे मैं तो सम्यक दृष्टि, मैं तो मुनि, ऐसा है जिसने मान के रखा उसे में अभिमान करता है। तो कहते हैं एक समय ना शुद्ध पर्याय नी अने शुभ रागादि नी आड़मा, वो जो तिजे जो शुभ राग हो रहे हैं कि हम तो साहब रात को कभी खाना भी नहीं खाते, हमको तो बिल्कुल ऐसा कोई मन में विचार भी नहीं आता है, अरे हम तो वो वर्षी तप करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं ना वैसा करते हैं, जो कुछ करते हैं हा? ये क्या बोलते हैं तुम्हारा कंदमूलादि भक्षण नहीं करते हैं, अरे चाय तो हमने आज तक पी नहीं साहब, बीड़ी अरे पूछो ही मत, हाथ तक नहीं लगाया, ऐसा ऐसा जो कुछ है। तो वो शुभ भाव जो कुछ होते उसकी उसकी रुचि के आड़ में, शुभ राग में नहीं ये क्या कह रहे थे, शुभ रागादिनी आड़मा एटले रुचि मां, आड़मा एटले उसकी रुचि है ना, जिसको जो शुभ राग की रुचि है वो रुचि में वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। शुभ राग करने की मना नहीं है, समझना नहीं तो आप धोखे में आ जाओगे, शुभ राग हो जाता है करने की बात ही कहां है, लेकिन उसमें रुचि है तो वो वहीं अटका है। देखो क्या लिखा है, एक समय ना शुद्ध पर्याय नी आड़मा अथवा के रुचिमा, तेवी रीते एक समय नी पर्याय ने अने शुभ रागादि नी आड़मा एटले रुचिमा तारा एक स्वरूप भगवान आत्मा नो अनादर थई जाय छे। ख्याल में आया, तो तेरी जो रुचि है वो अपने स्वभाव में रुचि है या ये दूसरी बातों में रुचि है, ये तू पहचान, ये तो तू ही स्वयं पहचान सकेगा, दूसरे कोई तेरे को पहचानने में मदद ही नहीं कर पाएंगे। तुझे ही याद करना है कि मैं कहां गया हूं, मेरी रुचि कहां है। देखो और आगे बात आएगी, शायद आ जाएगी, कल आएगी, मालूम नहीं है। क्या कहते हैं, शुभ रागादीनी आड़मा रुचिमा तारा एक स्वरूप। एक स्वरूप यानी त्रिकाल जैसा, उसका एक जैसा, एक सदृश परिणाम जिसको कहते हैं, एक जैसा ऐसा जो तेरा स्वरूप है, उसमें कोई भी हीन अधिकता नहीं है, ऐसा जो तेरा एक स्वरूप भगवान आत्मा है, तेनो अनादर थई जाय छे हो। और क्या बोलते, तूने क्या किया, रागादी पामर ने, यानी रागादी कैसे, दलिंदर है, पामर है, भिखारी है, तेने ते प्रभुता पीछे, यानी राग को ही तूने सब कुछ मान लिया है। रागादी पामर ने ते प्रभुता आपी दीदी छे, तेथी तारा भगवान आत्मानो अनादर थाय छे। देखो मैं एक दफे, अभी कुछ साल पहले की बात है, मेरा एक मित्र है, वो क्या बोलते हैं, ये यात्रा निकाल देना, यात्रा का आगेवान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, संघपति, संघपति बने। वो बोले भाई तेरे को फोटो निकालने को आने का है, और वो इधर उधर 5-50 जगह लेके गया हमको, और उसके साथ में कम से कम 200-300 लोग थे। तो वो बोले मैं तो अपेक्षा करता था कम से कम 500 लोग तो आने चाहिए, मैंने इतना अच्छा ये किया था, लेकिन खाली 300 ही लोग आए, ऐसा करके वो रोता था। तो ये शुभ राग ना रुचिमा, ये मैं बताना चाहता हूं, और आपको पूछना है तो मैं नाम एड्रेस टेलीफोन नंबर सब दूंगा, घबराना मत। हाँ नहीं अभी नहीं है उसका। तो ये क्या है कि इसमें ऐसा ही मानते हैं कि हमने इतने जन को यात्रा में लेके गए, हमने ये किया वो किया। भाई देखो ऐसा नहीं करो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसमें ही तुम अटक के रहेंगे और अपने स्वरूप को भूलेंगे तो तुम धोखे में हो, तुम्हारा आगे काम बढ़ने वाला है नहीं, ये बताना चाहते हैं। तो कहते रागादी पामर ने ते प्रभुता पीछे, कि रागादी कैसे पामर है और उसको तूने सब कुछ मान लिया है। तेथी तारा भगवान आत्मानो अनादर थाय छे। आहा हा भगवान नी वाणी मां जारे आ उतू हशे अने समोसरण मां एक अवतारी इंद्रो सांभळता हशे। तो समोसरण में जो इंद्र आते हैं वो कैसे होते, एक अवतारी यानी एक भवावतारी, यानी अगले भव में वो मनुष्य होंगे और उस भव में वह मोक्ष पधारेंगे, जो इंद्र होते हैं। ये नियम है। श्रोता आप पन सांभळता हता प्रभु, उनको किसी ने बता दिया, हा पन अमने अत्यारे तेनो विरह पड़ी गयो छे ने, तेनी तो आ वात चाले छे। आहा हा आ धान ना ढगलाती जे शरीर बने छे ते नहीं। क्या कहते ये अपन अनाज खाते उससे जो शरीर बना एनी बात नहीं, पन मणि रत्न ना पुतला जेव वैक्रियक शरीर होय। ये किसकी बात कर रहे हैं, इंद्रों की। पन मणि रत्न ना पुतला जेव वैक्रियक शरीर होय एवी करोड़ों अप्सराओ जेने छे तथा घना विमानों ना असंख्य देव होय एवा 32 लाख विमान जेने घरे छे। क्या कहते हैं, उनके जो वहां का रहने का जो रेठान है उसको विमान बोलते हैं, और एक एक विमान में असंख्य देव रहते हैं, और ये सारे अंडर हिज कंट्रोल, जैसे अभी हम अब्दुल कलाम के नीचे अंडर हिज कंट्रोल है ना, वैसे वहां का वो अब्दुल कलाम कौन, इंद्र, और उसके कितने एक एक विमान में असंख्य देव, और ऐसे 32 लाख विमान होते हैं उसके, और इनका ये अधिपति होता है इंद्र। लेकिन वो इसमें इन सारी चीजों में, और क्या बताएं कितने अप्सराओं, करोड़ों अप्सराओं, फिर भी उनमें उसका कोई एकत्व पना नहीं है। ऐसा जीव जो अगले भव में मोक्ष जाने वाला हो ऐसा वहां सुनने के लिए आता है। क्या कहते देखो, तथा घना, फोर्थ लाइन, तथा घना विमानों में असंख्य देव हो एवा 32 लाख विमान जेने घरे छे एवा अर्धलोक ना स्वामी एक अवतारी शकेन्द्र ने ईशानेन्द्र पन भगवान, चक्रेन्द्र है, शकेंद्र नहीं, शक्रेंद्र, सौधर्म इंद्र। पण भगवान नी वाणी सांभळे छे, तेवो कहे छे के अरे आ वैभव नहीं 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 हो, अमे तो अमे केवा छे ते सांभळवा भगवान पासे जाइए छे। यानी उनका शरीर भी इतना दिव्य होता है, क्या कहा इधर, मणि रत्न ना पुतला जेवू। अपने को एक अंगूठी में एक नाक में मणि होवे तो हम कितना नाचते, अरे उसका तो पूरा इनका तो पूरा शरीर कैसा मणि रत्न जैसा। और वो कहते आ हमें नथी, आ हमें नथी, सु आ वैभव नहीं 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 हो, हमें तो हमें केवा छे ते सांभळवा भगवान पासे जाइए छे। लियो खबरवाळा एटले ज्ञानी पण सांभळवा जाय एम कह्युं छे। तेवो एक केटले दूर दूर थी ना, केटला दूर थी एटले ऊपर थी नीचे उतरे छे। जारे अहींया आ अज्ञानी, अभी एवा अज्ञानी किसी ने और डाल दिया, त्यारे तो आ तो कदाच कोई ग्राहक आव्यो होय ने आठ आना के रूपियो मळतो होय तो आ सांभळवानुं चूकी जाय एटले छोड़ी दे छे। केम के सांभळवानुं तो दररोज मळे छे, दिनेशभाई क्या मरवा जशे एम के छे। नहीं नहीं वो उनकी बात कर रहे, मैं गलती से बोल गया। क्या लिखा, केम के सांभळवानुं तो दररोज मळे छे ने, सांभळवानुं तो काले पण मळशे, माटे काले जवाशे। आम करीने ते प्रमाद करे छे। अभी गुरुदेव की भी ये कहां से बात समझी कि भाई ऐसा होने वाला है आगे जाके, अभी उनके काल में भी होता होगा ऐसा। हा? उस समय तो आठ आने रुपया और अभी एक करोड़ रुपया समझ लो अपन, किसको करोड़ मिलता हो तो बोले जाने दो ना, ये तो अभी का तो नक्की करो, इसका तो भरोसा नहीं, मिले नहीं मिले कोई बात। भगवान नी वाणी मां एम आव्युं छे ने अत्यारे इंद्रो भगवान पासे जाय छे ने तो तेमा एम आवे छे के भाई एक क्षायोपशमिक पर्यायनो प्रकट अंश तारो पोतानो अंश हो, व्यवहार जीव छे ये जो प्रकट अंश है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान है ना, तारो पोतानो अंश छे, व्यवहार जीव छे भाई। जीव तरीके एटले के जीवना पर्याय तरीके अहिया एक क्षायोपशमिक पर्याय लीधो छे। केम के औदयिक भाव तो आश्रव ने बंध तत्व में जाय छे, निगोदना जीव ने त्रण भाव छे ने, परम पारिणामिक भाव, क्षायोपशमिक भाव अने औदयिक भाव, ए त्रण भाव छे। तेमाथी औदयिक भाव विभाव में जाय छे, अर्थात पुण्य पाप आश्रव ने बंध में जाय छे, अने क्षयोपशम ज्ञान नो जे अंश छे क्षयोपशमिक भाव छे, ते आत्माना एक समयना पर्यायनो भाव छे, तेती ते व्यवहार जीव छे, एटले एने परद्रव्य कहेवामां आव्युं छे। ये समझ में आया क्या? अभी ऐसा ये पांच भाव है, इस पांच भाव की जानकारी हो तो ये जल्दी समझ में आवे। और अपने यहां बहुत बार ये पांच भाव हो गए, अपने अभी लेटली तत्वज्ञान पाठमाला एक में भी हमने पढ़ा था और तत्वार सूत्र में भी ये बात आई थी दूसरे अधिकार में।
यहाँ क्षयोपशमिक भाव को व्यवहार जीव कहा है, तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व को कौन सा भाव लेना, कौन सा तत्व लेना, प्रश्न ख्याल में आए? हे तो सभी देखो यहाँ क्या लिखा है, क्षयोपशम ज्ञान नो जे अंश छे तेने व्यवहार जीव कहो छे, बराबर, एने जीव तत्व लिया उसको। तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व जिसको होगा वो कौन सा तत्व होगा? आप बोलो। हाँ देखो ये
आप प्रश्न मत पूछना, आप उत्तर देना। हाँ यहाँ पर ही
यही की बात चल रही, नियम सार की बात चल रही है।
कौन सा तत्व है?
सात तत्वों में उसको कौन से तत्व में लोगे हम?
क्योंकि यहाँ तो जीवादि सात तत्वों को ही कहा है, तो इसमें से कौन से तत्व में आप फिट करना
चाहेंगे? सार्वभौमिक ज्ञान को जीव तत्व लिया तो मेरा प्रश्न है सार्वभौमिक सम्यक्त्व को कौन सा तत्व लेना?
सार्वभौमिक सम्यक्त्व कह रही है, क्षायिक सम्यक्त्व कह रही है?
सार्वभौमिक
सम्यक्त्व इसमें, हाँ इनका कहना है व्यवहार जीव तत्व। आप दूसरा कोई कुछ कहना चाहते हैं?
क्यों, दूसरा कोई है नहीं उसमें? अजीव कैसे हुआ? जीव की पर्याय ना वो, देखो शुद्ध पर्याय आ गई ना। सार्वभौमिक सम्यक पहने स्वभाव पर्याय आ गई हो तो वो उसमें लेनी पड़ेगी संवर निर्जरा में, शुद्ध भाव है ना।
बोला था
मन में बोला था,
नहीं नहीं कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने बोला था मैं जाना नहीं, आपने ऐसा पूछा ऐसा होगा ना ऐसा पूछा था।
देखो ये जो क्षायोपशमिक भाव व्यवहार जीव है वो तो अनादि से है, और जो क्षायोपशमिक सम्यक तो मैं पूछ रही हूँ वो तो अभी शुद्ध भाव नया प्रकटा है, तो जरा मैं लेना।
हाँ
वो सारे ही सात तत्व है या है उसकी बात नहीं है, वो सात में कहाँ बिठाना उसको, इसकी मैं पूछ रही।
ये सात तत्वों में क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को कहाँ हम फिट कर सकते हैं उसकी अपेक्षा से बात पूछी गई थी। वैसे तो आप जो कह रही हैं कि यहाँ तो पांचों ही तत्व पर्याय तत्व होने के नाते हे ही कहे हैं, सातों ही तत्व, सातों ही तत्व तो भाव की अपेक्षा से तो पारिणामिक भाव छोड़ के अन्य चार भाव। हाँ जी संवर निर्जरा में ले सकते हैं। आ रीते जीव एटले एक एक पॉइंट, जीव एटले एक समय नो क्षायोपशमिक भाव नो पर्याय अवस्था, अजीव तीसरा जे आश्रय विकार छे ते बंदे एटले अटकवू तेवो भाव, अने पांच छ सात एटले आश्रय बंधनो अभाव थईने थता संवर अने निर्जरा अने मोक्ष। अब यहां क्या कहा देखो, एक बात जरा ध्यान रखना, आश्रय के अभाव से कौन सा तत्व खिलेगा, कौन सा तत्व आएगा? हाँ संवर, और बंध के अभाव से कौन सा तत्व आएगा? हाँ और देखो पार्शल निर्जरा होती है ना, बंध का अभाव पार्शल अभाव वो निर्जरा होगी और परिपूर्ण मोक्ष। तो इसलिए कहा आश्रय बंधनो अभाव थईने तथा संव निर्जरा मोक्ष ते परद्रव्य छे, आश्रय बंधनो व्यय थईने संवर निर्जरा ने मोक्षनो उत्पाद थाय छे, आ बधुं जीवना एक समयना पर्यायमां थाय छे, छता कहे छे के ते परद्रव्य छे। भगवान तारी पूंजी मोटी छे अने ते महाप्रभुनी पूंजी आगळ सात पर्यायोना समूहने आई परद्रव्य कहेवामां आवे छे, याने तेरा स्वभाव जो है वह तो महान है और उसके सामने एक पर्याय जितनी जो अवस्थाएं हैं वह तो नगण्य है, कुछ नहीं उसमें। तारी पूंजी मोटी छे अने महाप्रभुनी पूंजी एटले जो न्यायिक स्वभाव भाव है तो उसको महाप्रभु कहा, एना अगर सात पर्याय नो समूह ने आई परद्रव्य कहेवामां आव्युं छे। आहा मती श्रुत ज्ञान नो अंश होय, अरे सम्यक मति श्रुत ज्ञान नो अंश लियो तो पण ते परद्रव्य छे। भाई मगजमां एटले विचारमां तो आ आवतुं आव्युं हतुं के भणवा गणवा रूप जे क्षयक्षम ज्ञान नो अंश छे तेने तो परद्रव्य कह्यो, परंतु सम्यक ज्ञान ने पण परद्रव्य कह्युं, गजब वात छे ने। સ્વને અવલંબે પ્રગટેલું જે સમ્યક મતિ શ્રુત જ્ઞાન કે કેવળ જ્ઞાન છે તે અંશરૂપ છે, માટે આ પરદ્રવ્ય તરીકે ગણ્યું છે. દેખો ક્યા કહા, એ બાકી જો વિભાવ ભાવ રૂપ જો હે ને વો તો સમજે તો કહેતે, લેકિન સ્વ કા અવલંબન લેને કે બાદ ક્યા પ્રગટ હુઆ હૈ સમ્યક મતિ જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાન, ત્યાં તક હી નહીં રૂકે, કેવલ જ્ઞાન. તો કહેતે કેવલ જ્ઞાન છે તે પણ કેવો છે, અંશરૂપ છે, માટે તેને અહીંયા પરદ્રવ્ય તરીકે ગણ્યું છે. આવો માર્ગ છે એમ ભગવાન જ્ઞાનમાં તો રાખ, લક્ષમાં તો લે, બહાર દુનિયામાં પણ એમ નથી કહેતા કે જે આ વાત હું કહું છું તે ઉપર, તે લક્ષ્ય ઉપર તો લે, વિચાર કર્યા વગર એમને એમ આ વાતને તું કાઢી નાખ્યો છો. તો હવે હું કહું છું તે વાત લક્ષ્ય, તે વાત લક્ષ્ય ઉપર તો લે, એમ ભગવાન કહે છે કે અમે કહીએ છીએ તે વાત જરી તારા ધ્યાનમાં, એટલે ધ્યાનના પર્યાયમાં, એટલે લક્ષ્ય ઉપર તો લે. કહે છે કે જીવાદી સાત તત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે ખરેખર ઉપાદેય નથી. પાઠમાં હેમ શબ્દ છે, પાઠમાં એને ઓરિજિનલ શ્લોક મેં ને ટીકામાં પહેલા અર્થ તો એવો હેય જ કર્યો, પણ પછી આ હે છે એમ કહેવા કરતા ઉપાદેય નથી, આદરણીય નથી એમ અર્થ કર્યો છે. આ સંવર નિર્જરાને મોક્ષ પણ આદરણીય નથી. પ્રશ્ન યહાં તક સમજ મેં આયા? પ્રેરણાબેન આગે બઢે. સાત તત્વોમાં તો જીવ દ્રવ્ય પણ આવ્યું, તો શું તે પણ હેય છે? અહીં જીવ તત્વ સાત જીવ તત્વ પણ આવ્યું, જીવ દ્રવ્ય કહેવાય છું મેં. સાત તત્વોમાં તો જીવ તત્વ પણ આવ્યું, હા અહીં જીવ તત્વ એટલે કે એક સમયનો પર્યાય, એ બિલકુલ બાત ધ્યાન મેં રખના. યહાં જો જીવ તત્વ કી જો બાત કી હૈ ઉસકો કહેતે કે એક સમયની જો પર્યાય હૈ વો, અહીં એક સમયના પર્યાયને જીવ તત્વ કહ્યું છે. જ્યારે જે આ આખું દ્રવ્ય ધ્રુવ તે જુદું છે, તે તો સ્વદ્રવ્યમાં આવશે. હા હા, જીવાદી સાત તત્વોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે ખરેખર ઉપાદેય નથી એમ કહ્યું ને, છે ને અંદર કે જીવાદી સપ્ત તત્વ જાતમ પરદ્રવ્યત્વાત નહી ઉપાદેયમ. તો જીવનો એક સમયનો ક્ષયક્ષમ જ્ઞાનનો પર્યાય, અજીવ એક સમયનો પુણ્ય ને પાપનો વિકલ્પ, અર્થાત તે બે થઈને આશ્રવ કે જે ઔદયિક ભાવ છે તે બંધ, સંવર નિર્જરા ઔપશમિક ભાવ ને ક્ષાયોપશમિક ભાવ, અને મોક્ષ કેવળ જ્ઞાનાદિ ક્ષાયિક ભાવ, આ બધા પર્યાયોનો સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને કારણે ખરેખર આદરણીય નથી. દેખો યહાં ક્યા બાત બતાતે, યહાં સાત તત્વો મેં ચાર ભાવ લગાએ હૈ, પારિણામિક ભાવ છોડકર અન્ય ચાર જો ભાવ હૈ. ક્યાં કહા, જીવનો એક સમયનો ક્ષયક્ષમ જ્ઞાનનો પર્યાય, વો જીવ તત્વ મેં લ્યા, અજીવ તત્વ મેં કિસકો નહીં ડાલા, એક સમયનો પુણ્ય નહીં પાપનો વિકલ્પ, વો જો હૈ વહ ઔદયિક ભાવ હૈ, તે બેને આશ્રવ કે જે ઔદયિક ભાવ છે, આશ્રવ તત્વ કો ડાલા ઓર ઉસી કો બંધ તત્વ મેં હી રખા, ઓર સંવરો નિર્જરા જો હૈ વો ઔપશમિક ભાવ ને ક્ષાયોપશમિક ભાવ, યે દોનો મેં સંવર નિર્જરા કો લ્યા ઓર મોક્ષ કો કેવલ જ્ઞાનાદિ ક્ષાયિક ભાવ મેં લ્યા. કેવળ જ્ઞાનાદિ મેં ક્યા ક્યા લેના, બોલો બોલો આંકડા બોલો પહેલે, હા ખ્યાલ મેં, હા क्षायिक भाव नौ है, याद है ना? किसको याद नहीं है? इधर नहीं, आपको मालूम नहीं बहन, आप तो पढ़ चुकी है। डॉक्टर आपको याद है नौ क्षायिक भाव? अच्छा, तेजू को तो याद होनी चाहिए। हाँ बोल बोल, फटाफट बोल। बोल जल्दी जल्दी बोल। हाँ कौन बतावे? आप बताएंगे? बताओ। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। गाड़ी चली अभी आगे। तो ये केवल ज्ञानादि क्षायिक भाव में लेना, खाली पढ़ते जाने से कोई फायदा नहीं है। ये किसकी किसकी बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा दोहराएंगे हम, तो अपना भी ज्ञान में कलई हो जावे कि हाँ आ गया कुछ। हाँ सब ऐसे औदयिक भाव जो है ना, पाप विकल्प जो है ना, उसको तो आश्रम में ले और उसमें अटकना ये बंद है। उसमें अटकता है ना जीव, वो तो बंद का वो परिणाम। मोक्ष केवल नैनंदी क्षायिक भाव। आ बधा पर्यायनो समूह परद्रव्य होने कारण, ये क्या है? का है पर्यायनो समूह छे, वो मूल बात है, इसलिए उसको परद्रव्य कहा। परद्रव्य होने कारण खरेखर आदरणीय नहीं। हवे इंद्रियना फैलावनी व्याख्या काले करी हती ने, ते विचार तो घना वक्त पहला आ 31मी गाथा सिवायनो श्री समयसार जीनी 31मी गाथा में कहेला भाव सिवायनो आवेलो, क्या नग्नपनु कहूं छे ते शू छे, नग्न कोण थई शके, त्यारे ए विचार आयो हतो के इंद्रिय निग्रहपनु दृष्टि में तो छे, परंतु हवे जेने स्थिरता में अस्थिरता छूटीने इंद्रिय निग्रहपनु थई गयो छे अने नग्नपनु होय छे, पांचे इंद्रियों तरफ नो अस्थिरता नो विस्तार खसी एटले छूटी गयो छे, એટલે તેની દશા એવી નગ્ન જ થઈ જાય છે। કાલે તો જો કે 31મી ગાથાથી અર્થ કર્યો હતો, પણ આ વિચાર તો ઘણા વર્ષો પહેલા આવ્યો હતો। પાંચ ઇન્દ્રિયોનો દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ નિરોધ તો પ્રથમ થઈ જાય છે અને એ તો સમ્યક દૃષ્ટિને હોય છે। અર્થાત આ જડ પાંચ ઇન્દ્રિયો તો પર છે, પરંતુ જે ખંડખંડ ઇન્દ્રિય ખંડખંડરૂપ ઇન્દ્રિય છે તેનો નિગ્રહ થઈને જ્યારે અતિન્દ્રિય દૃષ્ટિ થાય છે ત્યારે સમ્યક દર્શન થાય છે અને એ તો ચોથે ગુણસ્થાને હોય છે। પરંતુ મુનિને આ નગ્નપણું એટલે શું? અહીંયા ફેલાવ શબ્દ છે ને, તેથી ઘણા વર્ષો પહેલા આ વિચાર આવ્યો હતો કે આ શું કહે છે કે જે ચોથે ગુણસ્થાને જ્ઞેય તરીકે હતો તે પાંચ ઇન્દ્રિયો તરફનો અસ્થિરતાનો ભાવ પણ જેને ટળે છે અને ત્યારે નગ્ન દશા થઈ જાય છે, પછી કાંઈ કોઈ પરિગ્રહ રહેતો નથી, આવી સ્થિતિ છે, એવો વસ્તુની સ્થિતિ જ આવી છે। દેખો યહાં ક્યા કહેતે ફિર સે પહેલે સે દેખતે હમ, યહાં ક્યા કહા થા કે ઇન્દ્રિયનો ફેલાવ, अभी ये इंद्रियों का फैलाव समझना हो तो जरा हम पीछे चलते हैं। देखो पेज नंबर आप निकालिए, दो दो नंबर, यहां देखो थर्ड लाइन में है, सेकंड लाइन में लास्ट वर्ड है, मिल गया दो नंबर का पेज। पांच इंद्रियों ना फैलाव रहित देह मात्र जेने परिग्रह छे, ये बात आगे चलाते हैं। यहां तो ये समझाते हैं कि ये जो अपना कैसा है, अभी अपनी बात लेते हैं तो हमें तो पांचों इंद्रियों में ही अपना उपयोग सदोदित चला रहता है और उसी में हम रचे पचे रहते हैं। तो इसलिए वहां लिखा है पांच इंद्रियों ना फैलाव रहित देह मात्र जेने परिग्रह छे, यानी ये परिग्रह में वो इंद्रिया भले हो लेकिन वो इंद्रियों के विषयों जो है उनके प्रति इस जीव का कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए यहां कहते हैं तो उन्होंने खाली इतना ही दिया है कि इंद्रिय न फैलावनी व्याख्या काले करी थी, यानी वहां ये समझाना चाहते हैं कि ये इंद्रियों के माध्यम से जो विषय ग्रहण होता रहता था तो श्रद्धा अपेक्षा से तो ये चौथे गुणस्थान में ही रुक जाता है। ख्याल में कि पांच इंद्रियों के विषय जो है उसमें इसकी रुचि रुक जाती है, लेकिन जब वह तीन कषाय के चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरकता धारण करता है तब इस जीव के यह जो पांच इंद्रियों के विषय की तो रुचि तो छुटी थी, अभी तो उसका फैलाव यानी उसमें उसका ग्रहण करने का भाव ही नहीं रहता है, ऐसे वक्त इस जीव को नग्न दशा होती है। देखो अब हम देखते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं, ये पांच इंद्रियों में जो पहला जो स्पर्शन इंद्रिय है वह स्पर्शन इंद्रिय तो पूरे शरीर में व्याप्त है, प्रसरण हुआ है, उसका पसरा हुआ है, क्योंकि यहां पर भी स्पर्श जाना जाता है, यहां पर भी जाना जाता है पैर के अंगूठे पे और यहां माथे पे भी, और बाकी जो इंद्रिया है वो तो स्पेसिफिक जगह में अपने अपने जगह पर है, जैसे आंखें इधर है, नाक इधर है, आंखें कहीं दूसरी जगह नहीं होती, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय सारी जगह। तो अब यहां कहते सबसे अगर कोई डिफिकल्ट बात हो तो स्पर्शन इंद्रियों को जीतना, यानी स्पर्शन इंद्रियों को जीतना यानी क्या, स्पर्शन इंद्रिय के जो जो विषय है उसको जीतना, यानी अभी हम बहुत स्थूल रूप से गिनेंगे तो ठंडी गर्मी बाकी जो भी है, अभी कोई मतलब आके आपको वो मच्छर काटते वगैरह 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 सब इसमें ले लेना, बैठने के लिए हमको तो गद्दी चाहिए, बैठने के लिए हमको सोने के लिए आराम से वो डनलॉक चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारे क्या स्पर्शन इंद्रिय के विषय, जितने आपको समझ में आवे ले लेना, ये स्पर्शन इंद्रिय के जितने विषय है। तो जब स्पर्शन इंद्रिय का जो फैलाव इसको हम कहते हैं जिसमें हमको अधिक अधिक इंटरेस्ट है, अधिक अधिक चाहत है, वो सारी इनकी नष्ट हो जाती है, तो ऐसे जब भाव हो जाते हैं तो बाह्य में नग्नता सहज रूप से आती है, लाभी